आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
कुछ फिल्में सिर्फ पर्दे पर चलती हैं और कुछ दिलों में बस जाती हैं। वो कहानियां जो जमाना बदल देती हैं, वो किरदार जो हमेशा के लिए हमारी यादों में बस जाते हैं। शोले जैसी फिल्म जब 50 साल पूरे करती है तो हम सिर्फ एक फिल्म को नहीं, एक युग को याद करते हैं। लेकिन शोले अकेली नहीं है। भारतीय सिनेमा के हर दौर ने कुछ न कुछ ऐसा दिया है जिसने नए कलाकारों, निर्देशकों और दर्शकों की सोच को आकार दिया है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे एक सिनेमा विशेषज्ञ से कि कैसे इन फिल्मों ने बदल दिया हमारा सिनेमा और कैसे आज भी उनकी गूंज सुनाई देती है नए दौर की फिल्मों में। तो चलिए फिर रोशनी कम कीजिए, मन की स्क्रीन पर से पर्दा उठाइए और जुड़िए हमारे साथ इस फिल्मी सफर में। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूँ ज्योतिका और हमारे साथ आज जुड़े हैं श्री चैतन्य प्रसाद। आइए उनसे बातचीत करते हैं। चैतन्य जी, SBS हिंदी के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ज्योतिका नमस्कार और आपके जितने पाठक हैं उनको भी हमारा नमस्कार।
शोले ने हाल ही में 50 साल पूरे कर लिए हैं, आपके अनुसार ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो एक फिल्म को समय की कसौटी पर खरा उतरने देती हैं?
देखिए, शोले एक अजीब सी मिसाल थी। 50 साल पहले 1975 में ये चली गाड़ी और अब हम 2025 में हैं, तो ये कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि शोले एक फिल्म 50 साल ऐसे ही चलेगी, ऐसी गति पकड़ेगी और उसकी ऐसी रिकॉल वैल्यू आएगी कि हर दशक में उसके लिए एक लोगों को अचंभित करके रखा है। और ये एक अजीब सा उसका कोड है क्योंकि शोले एक कैच फ्रेज रहा है, क्योंकि फिल्म में जितने भी पात्र हैं, जिस तरह से उसको उसके नरेशन को जोड़ा गया है, जिस तरह से शोले की ब्रांडिंग हुई थी, ये एक हम कह सकें अंग्रेजी में एक वो री इन्वेंट किया गया था ब्रांडिंग को, एक कंटिन्यूटी थी और वो इंडियन सिनेमा की एक इमोर्टैलिटी है। वो अपने आप एक एपिक मूवी है, क्योंकि हम लोग जब बचपन में उसको देखे थे और आज भी देखते हैं, हमें हर बार कुछ उसमें नयापन लगता है क्योंकि उसमें एक अजीब सी एक स्पार्क है। उस मूवी में हर एक सीन हमको याद है, हर एक डायलॉग हमको याद है, फेमस लाइंस जो है हम रटे रहते हैं। जैसे फिल्म शुरू होती है, अगर हम जैसे OTT पर भी देख रहे हैं तो जैसे डायलॉग आने लगता है, एक नेचुरल रिएक्शन होता है कि वो डायलॉग हम खुद मन में या बोल देते हैं। ये फिल्म ऐसी थी, इसमें रोमांस था, एक्शन था, कॉमेडी था, ट्रेजेडी था, इमोशन था, सस्पेंस था, इतना सारा मैट्रिक्स को रमेश सेपी ने बहुत सुंदर तरीके से जो है। और एक चीज जो ज्योतिका मैं कहना चाहूंगा कि ये 50 साल बाद भी हमको एक उसमें एक नयापन लगता है, तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग होती है हमको।
अगर चैतन्य जी क्लासिक फिल्म्स की बात की जाए, 70 की बात करें, 80 90 के दशक की बात करें, किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करती हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन फिल्म्स जो आज के समय में लिखी जाती हैं या फिर डायरेक्ट की जाती हैं?
देखिए, जो हमारी ब्लॉकबस्टर्स थी या जो मतलब ऐसी लेगेसी फिल्म्स हम कहेंगे 70 से या 80 से, या हमको अनफॉर्चुनेटली, ये मैं सोचता हूँ, आई थिंक दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आज की जो फिल्म है ना वो मतलब इट इज लाइक अ वन ऑफ काइंड ऑफ सिचुएशन होती है। अब जैसे दिलवाले दुल्हनिया आए ले जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया वो एक अनदर कल्ट मूवी थी, इतने साल मराठा मंदिर में चली और चलते गई एटसेट्रा, तो वो उसका एक अपना एक जुनून था, चांदनी जैसे थी। अब इस तरह की जो फिल्म थी जो आई है और चली है, या माधुरी दीक्षित की जो फिल्म थी, या हम दिल दे चुके समरम थी, तो ये सब फिल्म कल्ट फिगर्स वाली होती है। आजकल की फिल्म में हमें जो लगता है कि वो स्टोरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश करते हैं वो लोग, लेकिन उनका इम्पैक्ट प्रोलॉन्ग नहीं होता है क्योंकि बॉक्स ऑफिस जो है ना आजकल 2 दिन के अंदर डिसाइड हो जाता है। ये जो सारी फिल्म ने जिनका मैंने जिक्र किया, इसमें वो फर्स्ट वीक में वो हीट अप करता था, वो टेम्पो बिल्ड अप करता था। देखिए, उस वक्त जमाने में आपको याद होगा 25th एनिवर्सरी सिल्वर जुबली बनती थी, गोल्डन जुबली, वो बड़े बड़े ट्रॉफीज दिए जाते थे, तो वो एक अपने आप में इवेंट था। आजकल की पिक्चर पहले दिन जो आने वाला है उस पर डिसाइड होता है, बहुत से बहुत दूसरे दिन। अब जैसे शायद अभी ऑस्ट्रेलिया में भी रिलीज होगी वो वॉर टू आ रही है, और वॉर टू के लिए प्री पब्लिसिटी, उसका टीजर निकल गया, उसके गाने निकल गए, उसके फ्रेम्स निकल गए, वो हर एक एलिमेंट का एक ब्रांडिंग है। और उसमें वो क्या यूएसपी है उस फिल्म का, वो धीरे धीरे दर्शकों को दिखाया जाता है। पहले दिन की जो स्क्रीनिंग होती है उसमें जो लोग निकलते हैं उससे उनकी इंटरव्यू होती है। तो मुझे लगता है नहीं है कि आजकल की जो करंट फिल्म्स हैं वो एजलेस जो क्लासिक्स हैं हमारे उसको वो कहीं मैच कर सकते हैं।
अगर हम सामाजिक बदलाव की बात करें, सोशल चेंज की बात करें, तो क्या सिनेमा अभी भी इन्फ्लुएंस होता है फिल्म्स जैसे कि मदर इंडिया, मुगले आजम, लगान, इस तरह की फिल्मों से?
नहीं, बिल्कुल होता है। अब आप कोई सीरियस फिल्म देखें, जैसे आपने मदर इंडिया, वो तो एवरग्रीन है। बिमल रॉय की जितनी फिल्म थी वो एवरग्रीन है। देवानंद की जो पुरानी मूवी थी गाइड जैसे है, पाकीजा जैसे है। अब ये फिल्म्स को तो कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता। अभी देखिए 100 साल हुए गुरुदत्त के, उसको पूरे हिंदुस्तान में, हमको लगता है विश्व में भी उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। व्हाट अ मैन, राइट? अब अनफॉर्चुनेटली ही डाइड एट द यंग एज ऑफ 39। अब 100 साल बाद उसके आर्ट को और उसके क्रिएटिविटी और उसके जीनियस को दुनिया एक्नॉलेज कर रही है।
क्या ये फिल्में, आज के जो फिल्म स्कूल्स हैं या तमाम वर्कशॉप्स जो होती हैं भारत में, क्या इन क्लासिक फिल्मों से फ्यूचर है इन नए कलाकारों का? वो कहीं ना कहीं एक अच्छी शेप में बनता हुआ नजर आता है, क्या कोई हेल्प मिलती है?
नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि इट इज वन टाइम इंस्टेंट सक्सेस नहीं होना चाहिए। जितने एक्टर्स थे उन्होंने, जितने राजेश खन्ना थे, शमी कपूर थे, गुरुदत्त की मैंने बात, दिलीप कुमार साहब, राजकुमार थे, इनका जो एक मतलब एक क्लासिक प्रेजेंटेशन था स्क्रीन पर, वो हमें बहुत कुछ कह देते थे, बता देते थे अपने एक्टिंग के द्वारा। अगर यंग जनरेशन आता है तो यंग जनरेशन शुड परसिवियरेंस एंड पेशेंस इज इम्पॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली यंग जनरेशन स्टार्स को भी एक होता है टू प्रूव देयर मेटल। पहले दिन बॉक्स ऑफिस में क्या होगा वो डर उनको पड़ा रहता। दे आर टैलेंटेड, नो डाउट, बट चक्कर है कि ये जो मोनेटाइजेशन है ना सिनेमा का, हर चीज मोनेटाइज है, इतना सारा पैसा लगा रहता है कि उनकी छवि जो होती है एक्टिंग में वो कहीं ना कहीं मैंने फीकी पड़ जाती है। बिकॉज मेरा व्यू ये है कि फियर, जो एक फियर फैक्टर है वो कहीं ना कहीं, और प्लस व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ये जो आजकल का जमाना, जो पब्लिसिटी, ब्रांडिंग, परसेप्शन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरफ से किसी एक्टर को या उसके वर्क को या उसके प्रोफाइल को प्ले अप करते हो वो बहुत जरूरी है। दे नीड टू बिलीव इन देमसेल्व्स एंड लर्न फ्रॉम जो पास में जो आइकॉनिक एक्टर्स थे, उनको भी बहुत एड़ी चोटी एक करनी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि इट हैज बीन अ फुल टाइम सक्सेस। हर एक एक्टर, फर्स्ट सुपरस्टार हो, अमिताभ जी हो, राजेश खन्ना हो, दे ऑल हैड टू स्ट्रगल, एंड व्हेन दे स्ट्रगल्ड दैट वाज अनदर फेज ऑफ देयर लाइफ।
चैतन्य जी, टीवी का जमाना अब कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रीमिंग और फास्ट कंटेंट की एरा में आज हम जी रहे हैं। ऐसे में फिल्म फेस्टिवल्स के दौरान इन फिल्मों का जब दोबारा से प्रसारण किया जाता है या किसी फिल्म फेस्टिवल की ये फिल्में, आइकॉनिक फिल्में शान बनती हैं, तब जो नई जनरेशन है इनसे कनेक्ट कर पाती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबिलिटी भी एक कारण है कि आज की जो जनरेशन है इन आइकॉनिक फिल्म्स के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पाती है।
The point is कि the young generation, whether in India or in Australia or anywhere else, they need to look back, they need to read up. सबसे बड़ी बात है कि उनको जानकारी होनी चाहिए। और आपको मैं बताऊं, आजकल हिंदुस्तान में तो जो जमाना है कि re-releases हो रही है, सब पुरानी पिक्चर रिलीज हो रही है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि ये एक अनदर रेवेन्यू स्ट्रीम है, और खूब खूब चल रही है पिक्चर, पैक्ड हॉल्स। हम दोनों ने रिलीज किया तो दो लेवल ऑफ जेनरेशन गए, माता पिता भी गए, उनके बच्चे भी गए, एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग कि माता पिता अपने जमाने को याद कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो कहने का ये मतलब है कि द यंग जेनरेशन नीड्स टू डाइव डीप। और आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा जितने सारे लोग हैं, स्पेशली द डायस्पोरा इन ऑस्ट्रेलिया, कि इंडियन फिल्म्स को, स्पेशली जो पुरानी फिल्म्स हैं, उसको आपके माध्यम से वो एक मिनी फिल्म फेस्टिवल कराए। अब जैसे आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड कि मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल होने, हाँ, तो वहां पर क्या है, इज देयर अ गुरुदत्त रिव्यू प्रीव्यू, इज देयर अ फ्लैशबैक सीरीज ऑफ सिनेमा, तब तो होगा ना, क्योंकि केवल एक आइकॉनिक यंग जनरेशन ऑफ शाहरुख खान को दिखा दिया, वाई को दिखा दिया, एक्स को दिखा दिया, वो ठीक है, बट उसको बियॉन्ड जाना पड़ेगा ना बेचारों, उनको क्या मालूम, उनको तो गाइड करना पड़ेगा, अगर पेरेंट्स कहें तो शायद वो तैयार ना हो, इट इज समथिंग विच शुड अपील टू देम, राइट। इसके लिए एक सस्टेन्ड ये चीज होना चाहिए, जैसे आपका फेस्टिवल हो रहा है उसमें एक साइड शो होना चाहिए फिल्म फेस्टिवल का, जो पुरानी मूवीज हैं दो तीन आप देखिए क्या हिट होगी वहाँ, करना चाहिए इनको, आई फील वेरी स्ट्रांगली फॉर इट।
इंडियन सिनेमा का कोई एक एरा जिसका जादू अगर आज आप याद करना चाहें जब चला हो तो वो कौन सा एरा होगा?
वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्योतिका, बिकॉज एवरी एरा हैज इट्स ओन, आई मीन 50s was black and white all through, right? 60s was romance. 70s was the Rajesh Khanna era. 80s was the Amitabh Bachchan era. 90s was Shah Rukh Khan. You see, so every decade has had something to offer. Very unique, very innovative. गाने चाहे तो उस एरा के बहुत अच्छे थे, सिनेमोग्राफी सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी थी, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, एक्टिंग वॉज लाइक कीपिंग यू ऑन द एज ऑफ द सीट्स, राइट। जिस तरह से स्टोरी बोर्ड चलता है वो आगे कैसे जाता है, फॉर एग्जाम्पल यश चोपड़ा की जितनी मूवीज है अगर आप देखेंगे, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फ्रेशनेस, रोमांस इज रीडिफाइंड एवरी टाइम, राइट। इफ यू वॉच एन अमिताभ बच्चन एंग्री मन यंग मैन मूवी, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ मूवी। राजेश खन्ना की मूवीज देखें आप, सफर देख लीजिए, अमर प्रेम देख लीजिए, कटी पतंग देख लीजिए, इट्स वेरी डिफरेंट। दिलीप साहब की मूवी देखिए, दे आर काउंटलेस नंबर ऑफ देम। यू लुक एट अनिल कपूर, मेरी जंग फॉर एग्जाम्पल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू बाय एग्जाम्पल इज दैट एवरीथिंग इज यूनिक, इट वुड बी अनफेयर टू सिंगल आउट वन डेकेड, एंड एवरी डेकेड हैड समथिंग यूनिक टू ऑफर।
चलते चलते शोले फिल्म में से आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा था?
कितने आदमी थे
जी।
ओह, दैट इज लाइक इट एकोस बैक एंड फोर्थ,
राइट।
एंड द वे अमजद खान यूज्ड टू से रामपुर के वासियों,
जी,
यू नो, एंड द वे ही यूज्ड टू शाउट, और गांव-गांव से जो बच्चा रोता है तो गब्बर आ जाएगा, आई मीन दोस थिंग्स वाज स्कैरी इवन देन व्हेन वी वर इन स्कूल, डर लगता था सुन के भाई, आज भी अब नहीं डर लगेगा, लेकिन एंड ऑब्वियसली एंड असरानी का जो रोल था,
जी,
आधे इधर जाओ आधे जो बाकी जो है बीच में, दैट जेल सीन, सो एनीवे दैट इज हाउ इट इज।
चैतन्य जी, बहुत शुक्रिया आपके विचार हमारे साथ बांटने के लिए, और आपने अपना वक्त हमारे साथ बांटा, बहुत बहुत धन्यवाद SBS हिंदी के साथ बातचीत करने के लिए।
थैंक यू ज्योतिका, बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम थॉरली प्रिविलेज्ड, थैंक यू।
आपके लिए ये अंश पेश किया गया है SBS हिंदी से ज्योतिका द्वारा। इस अंश में पेश किए गए विचार व्यक्तिगत हैं। SBS हिंदी इससे न तो सहमत है और न ही असहमत।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।